इशिका को किसी और के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता था, वो बस राधिका के सामने अपना सट साबित करना चाहती थी। इसके लिए इशिका को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती। आयशा और प्रणाली के साथ बात करने के बाद इशिका अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आई। इशिका ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट राधिका के हाथ में रखते हुए कहा, एक बार इसे देख लीजिए। राधिका जैसे ही पेपर देखने को हुई, आयशा ने उन्हें उसके हाथ से छीनते हुए कहा, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो, अपना ये घटिया शादी का सर्टिफिकेट लेकर निकलो यहाँ से। आयशा ने वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ना चाहा, लेकिन उसके नेल एक्सटेंशंस करवाने की वजह से वो अपने हाथों को खराब नहीं करना चाहती थी। उसने उसे हाथ से क्रश किया और जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी। तभी इशिका ने उसके गाल पर एक कसकर तमाशा लगा दिया। पहले राधिका ने उसे थप्पड़ लगाया था, तो अब इशिका ने। उसका गाल एक तरफ से सूट चुका था। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ, क्योंकि तुमने एक सरकारी कागजात को नष्ट करने की कोशिश की है, इशिका ने गुस्से में कहा। ठीक है, बुला लो पुलिस को, फिर मैं भी मीडिया और रिपोर्टर को बुलाऊंगी और सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी, आयशा ने जवाब दिया। उसका हाथ अभी भी अपने गाल पर था। राधिका उन दोनों से परेशान हो गई थी और अब उसकी तबीयत खराब होने लगी। आयशा तो उसकी वैसे भी नहीं सुनती थी और इशिका भी अब जिद कर रही थी। इशिका ने आयशा को जवाब देते हुए कहा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं और अभिमन्यु। इशिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी उससे पहले राधिका ने उसके गाल पर थप्पड़ लगाया। वो इशिका पर पूरा यकीन करती थी, लेकिन उन्होंने पता लगवाया था कि अभिमन्यु की शादी 2 साल पहले हुई थी, जबकि इशिका की शादी को कुछ ही वक्त बीता था। ऊपर से आयशा ने जो फोटोज दिखाई थीं वो भी असली थीं। इशिका हैरानी से राधिका की तरफ देख रही थी। हालांकि उसने मालविका से कई बार मार खाई थी, ऊपर से राधिका ने उसे धीरे से मारा था, फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। आपको भी मेरी बात का यकीन नहीं है ना मिसेस सिंघानिया, इशिका ने भारी आवाज में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम यहां से जाओ, राधिका ने चिल्लाकर कहा। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी। तभी आदर्श ने उसे संभाल लिया। आदर्श ने तुरंत आयशा से पूछा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है और राधिका की तबीयत खराब कैसे हुई, और किसकी वजह से ऐसा हो सकता है डैड? ये सब इशिका का क्या धरा है? मॉम इसे कब से बोल रही है कि ये यहाँ से चली जाए, लेकिन ये सुन ही नहीं रही और इसी वजह से मॉम की तबीयत खराब हो गई, आयशा ने बढ़ा चढ़ाकर बताया। चली जाओ यहाँ से, आदर्श ने इशिका को चिल्लाकर कहा। पहले ही राधिका की थप्पड़ मारने की वजह से इशिका टूट गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था। इशिका के लिए सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। राधिका की आंखों में उसने अपने लिए नफरत देखी थी। अपना ख्याल रखिएगा मिसेस सिन्हानिया, और मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इशिका ने कांपती आवाज में कहा और फिर वहां से चली गई। राधिका उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। आयशा ने उसे रेस्ट करने के लिए अंदर लेकर आई। राधिका को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसे बेहतर लगने लगा तो उसने आदर्श से कहा, हमें अब घर चलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदर्श ने उनकी बात पर हामी भरी। जब वो बाहर आए तो उन्हें वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाई दिया जो आयशा ने गिराया था। न जाने क्या सोचकर राधिका ने उसे उठा लिया था। आदर्श ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। राधिका ने सफाई देते हुए कहा, ये इशिका का मैरिज सर्टिफिकेट है, गलती से गिर गया था, हमें उसे लौटा देना चाहिए। इतना कहकर राधिका मैरिज सर्टिफिकेट खोलने को हुई। तभी आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसका मजदूर पति हमारे घर पर आया था, फिर मैरिज सर्टिफिकेट देखने की क्या जरूरत है राधिका? ठीक है, ये उसे लौटा देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि उस लड़की की इतनी बदतमीजी के बावजूद तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया और आदर्श के साथ पार्टी हॉल में चली गई। वहीं दूसरी तरफ इशिका को जब राधिका ने थप्पड़ लगाया था उसके बाद वो पार्टी हॉल में वापस नहीं गई और वो सीधा ही विला के गार्डन एरिया में बनी आर्टिफिशियल लेक के पास बैठी थी। इस वक्त बाहर हल्की ठंड थी और इशिका की ड्रेस भी ऊपर से पूरी तरह रिवीलिंग थी। उसे ठंड लग रही थी, फिर भी वो खोई हुई पानी में देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इशिका के मन में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब राधिका ने उस पर यकीन ना किया हो। जिस दिन उस पर आशीष के मर्डर का इल्जाम लगा था तब भी राधिका इस पर यकीन कर रही थी, पर आज ऐसा लगा जैसे उन्होंने इशिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था, बाकी सब लोगों की तरह। इशिका की आंखों में आंसू थे। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर कुछ गर्म रखा हो। अचानक ही उसे ठंड लगना बंद हो गई थी। इशिका ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो वहां अभिमन्यु न जाने कब से उसके पास में खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही इशिका अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि इशिका खड़ी हो सके। उसने इशिका से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? इशिका अपने आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपका रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। इशिका को अब पूरी तरह ठंड लगना बंद हो गया था। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था और धीरे धीरे प्यार से सहला रहा था। जब भी इशिका परेशान होती थी तब न जाने कैसे अभिमन्यु हमेशा उसके पास पहुंच जाता था। काफी देर तक इशिका उसके गले लगी रही। जब उसे बेहतर लगने लगा तब वो अभिमन्यु से दूर होते हुए बोली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। आज इशिका उसकी मुस्कुराहट को देख सकती थी। उसने इशिका से कहा, बेशक हमें अंदर चलना चाहिए, क्योंकि दादी से इंतजार ही नहीं हो रहा है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी बहू को सबसे मिलवाना है। फिर अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और गंभीर आवाज में कहा, तुम समझ सकती हो ना हमारी शादी सबके सामने आने के बाद क्या होने वाला है। इशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे सब समझ आ रहा था, फिर भी उसने कन्फर्म करने के लिए अभिमन्यु से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं समझी नहीं, मिस्टर राजवंश, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। मैं राजवंश एम्पायर का सीईओ हूँ और इस हिसाब से मेरी पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करती है। एक बार शादी सबके सामने आ गई तो हम अलग नहीं हो पाएंगे। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अगर हम अलग हुए तो उससे कंपनी के शेयर्स और बाकी चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा। अभिमन्यु के कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि अब इशिका उससे तलाक नहीं ले सकती थी। कुछ पल फूकने के बाद उसने आगे कहा, तुम जानती हो ना कि मेरी फैमिली में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। वो सब मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहता है। फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है कि वो मुझे कंपनी से बेदखल कर दे और मेरा सब कुछ मुझसे छीन ले। मैं रोड पर भी आ सकता हूँ। अभी भी सोच लो, क्या फिर भी तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। अभिमन्यु अपनी तरफ से इशिका को हर एक सिचुएशन से अवगत करवा रहा था। इशिका ने जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी डॉक्टर मर्चेंट हूँ और मेरे भी कुछ बिजनेस हैं। तुम मेरे पैसों पर गुजारा कर सकते हो। इशिका ने सब कुछ काफी मासूमियत से कहा था, जिसे सुनकर अभिमन्यु मुश्किल से अपनी स्माइल कंट्रोल कर पा रहा था। हालांकि उसके और भी बिजनेस थे। अगर उसे राजवंश एम्पायर से बेदखल भी कर दिया जाता तो उसे कभी पैसों की कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि इशिका उसे ऐसा जवाब देगी।
अभिमन्यु इशिका के चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। जब उसने पहली बार इशिका को नक्श और आयशा की सगाई में देखा था तभी उसे नोटिस कर लिया था। लेकिन पहले वो उसे थोड़ी इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी थी। इम्प्रेस तो वो उससे पहली नज़र में ही हो गया था, लेकिन उसने वक्त लिया और इस वक्त ने उसकी पसंद को प्यार में बदल दिया था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर तुम्हें मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। तुम जानती हो ना मेरे खर्च काफ़ी हैं, कपड़े भी काफ़ी महंगे पहनता हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। बातें करते हुए कब उन दोनों के हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। अचानक अभिमन्यु को वसुधा की कही हुई बात याद आई तो वो इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, हमें हमेशा साथ रहना है और एक साथ बूढ़े होना है। इशिका ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु के प्रपोज करने का तरीका बाकी लोगों से अलग था और सीधे सीधे उसने अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन कुछ कहना बाकी भी नहीं रहा था। अभिमन्यु अपनी पूरी जिंदगी इशिका के साथ बिताना चाहता था। उसके बाद अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और पार्टी हॉल के पिछले दरवाजे से अंदर जाने लगे। वहीं राधिका और आदर्श भी इशिका को ढूंढ रहे थे ताकि उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दे सके। जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रहे थे, एक हाउस हेल्पर हाथ में वाइन की ट्रे लेकर जा रही थी। वो इतनी हड़बड़ाहट में थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो इशिका से टकराती, अभिमन्यु जल्दी से उसके सामने आ गया और इशिका को कसकर थाम लिया था ताकि उसे गलती से भी चोट ना लगे। अभिमन्यु से टकराते ही उसके हाथ में पड़ी ट्रे नीचे गिर गई थी। कुछ वाइन अभिमन्यु के कपड़ों पर भी गिर गई थी और कांच के ग्लास टूट गए थे। अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मैं ठीक हूँ, इशिका ने जवाब दिया। ये दूसरी बार था जब अभिमन्यु ने इशिका को चोट लगने से बचाया था। उसके बाद अभिमन्यु ने हाउस हेल्पर की तरफ देखा जो कांपते हुए सॉरी बोल रही थी। अभिमन्यु ने उससे कहा, ध्यान से काम करो, तुम इस तरह गेस्ट को चोट पहुंचा सकती हो। उस औरत ने एक बार फिर से अभिमन्यु को सॉरी कहा और फिर वहां से चली गई। अभिमन्यु इशिका से बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम दादी के पास जाकर बैठो, मैं बस चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देंगे। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत वसुधा के पास चली गई। इशिका ने इधर उधर देखा तो वसुधा वहां पर नहीं थी। इशिका उनके इंतजार में वहीं पर खड़ी हो गई थी। तभी उसकी नज़र अपने क्लासमेट पर पड़ी। आयशा उनके साथ प्रणाली के साथ खड़ी थी और उन्होंने प्रणाली को अभिमन्यु की पत्नी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। वो सब इशिका को अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ दिनों पहले इशिका ने उनसे अभिमन्यु की पत्नी होने का दावा किया था। इशिका ने गहरी सांस लेकर अपने मन में कहा, इन्हें जो सोचना है सोचने दो, थोड़ी देर बाद सच सबके सामने आ जाएगा। इशिका ने किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझा। इस पार्टी में आयशा ने इशिका को बेइज्जत करने के लिए मालविका को भी बुलाया था, लेकिन पृथ्वी ने उसे गेट पर ही पकड़ लिया था और अंदर आने से रोक लिया था। उस वजह से शायद इशिका का तमाशा लगने से बच गया था, लेकिन नक्श और आयशा अपने प्लान के साथ तैयार थे। पार्टी हॉल में एक दीवार पर प्रोजेक्टर के लिए अरेंजमेंट की हुई थी, क्योंकि अभिमन्यु सबके सामने शादी रिवील करने वाला था। उसे पर्दे से ढक दिया गया था।
अचानक से वो पर्दा धीरे धीरे ऊपर होने लगा और सबकी नजर उस तरफ चली गई। सब उस तरफ देखकर फुसफुसाकर बातें करने लगे। इशिका हैरान थी कि आखिर वहां चल क्या रहा है। भीड़ को साइड में करके जब वो आगे गई तो उसने देखा कि सामने प्रोजेक्टर पर उसकी और अभिमन्यु की वही फोटो थी जो किसी ने चुपके से ली थी बेडरूम में। इशिका अभिमन्यु के नीचे सोई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। भीड़ ने इशिका की तरफ देखा और उसके बारे में बातें करने लगे। वैसे भी इशिका और अभिमन्यु की काफी सारी अफवाहें फैल रही थी और अब वो उन्हें सच मान रहे थे। आयशा ने नक्श की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना इस पार्टी के बाद इशिका कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल सही, अच्छा हुआ दादी यहाँ पर नहीं है, वरना फिर से वो इस लड़की को मेरी बहू कहकर सबको कन्फ्यूज कर देती, नक्श ने जवाब दिया। इस बीच राधिका जल्दी से आगे आई और चिल्लाकर बोली, बंद करो इसे अभी के अभी। राधिका के कहते ही एक हाउस हेल्पर जल्दी से प्रोजेक्टर बंद करने के लिए जाने लगा। तभी नक्श ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसे वहीं पर रोक दिया था। इशिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने और अभिमन्यु के रिश्ते की सच्चाई जानती थी, फिर चाहे लोग उसे कितने भी ताने मारे। मीडिया रिपोर्टर और शहर के जाने माने लोग वहां इकट्ठा थे। न्यूज रिपोर्टर ने तुरंत उस फोटो को कैप्चर करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी इसी बीच अभिमन्यु चेंज करके वापस आ गया था। अभिमन्यु आगे आया और प्रोजेक्टर पर चल रही फोटो को देखकर उसके चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की मुस्कुराहट आ गई। नक्श ने अभिमन्यु को देखते ही कहा, चाचू आज आपकी वजह से कंपनी और राजवंश फैमिली को इतनी बदनामी झेलना पड़ रही है, क्या आप सबको सफाई नहीं देना चाहेंगे कि एक पत्नी के होते हुए आप इस लड़की के साथ बेडरूम में क्या कर रहे थे। अभिमन्यु ने नक्श की तरफ सर्द निगाहों से देखा तो वो आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसने सबके सामने आकर तेज आवाज में कहा, जरूर सबको सच बताना तो बनता है, बोलते हुए अभिमन्यु ने इशिका का हाथ कसकर थाम लिया था।